जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा को नमन, तेरा पंथ की आचार्य परंपरा को नमन, महामनस्वी महायशस्वी ओजस्वी हृदय सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा जी के चरण कमलों में वंदन, कानपुर धर्म नगरी के धर्मानुरागी श्रद्धा भक्त भाइयों और बहनों, आज हमारा दूसरे दिन का सायंकालीन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। पर्युषण पर्व आत्मा को जगाने के लिए आता है, आत्मा का मंथन करने के लिए आता है, आत्मा की जानकारी करने के लिए आता है, आत्मा का परिचय करने के लिए आता है। और यह पर्युषण पर्व हमें बताता है कि भीतर अपने आप चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब ये तीन प्रश्न आप अपने आप से पूछोगे, हम सभी अपने आप से पूछेंगे, तो इसका उत्तर इसका समाधान हमें मिल जाएगा। बंधुओं, हमारा मुख्य तत्व आत्म तत्व है। आज हो क्या रहा है कि मुख्य को गौण कर दिया गया है, गौण को मुख्य कर दिया है। हम मानते हैं कि हम व्यावहारिक जगत में जी रहे हैं, इसके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी नहीं, एक साधु भी जो है वो व्यावहारिक जगत में जी रहा है जब तक कि मोक्ष नहीं चला जाता है। लेकिन बंधुओं, प्रश्न ये है कि व्यावहारिक जगत को कितना स्थान देना और जो मुख्य कार्य आत्मा को कितना स्थान देना। हम सब वणिक वर्ग के लोग हैं, नफा नुकसान जानते हैं, कैलकुलेशन करना जानते हैं, और वणिक वर्ग मुंह से एक शब्द भी निकालेगा तो पहले वो कैलकुलेशन कर लेगा कि ये मैं बोल रहा हूं ये मेरे लिए लाभ का है या हानि का है। जब हम इतनी बुद्धि जानते हैं तो हमें इस बुद्धि का सदुपयोग करना है कि किस तरीके से हम दो खाते, मैं आपको आठों ही दिन दो खातों की चर्चा करूंगा बंधुओं, हमारा व्यवहार का जगत और हमारा निश्चय जगत, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये दो है, इसका संतुलन बनाना है। और ये जो पर्युषण पर्व आ रहा है ये बताता है कि हमारी मुख्य चीज जो आत्मा है उसके ऊपर हम 1-2% भी समय नहीं लगाते हैं। अरे कम से कम 10-20% तो लगाओ, ठीक है तुम्हारी इच्छा है कि तुम उसके अंदर 90% लगा रहे हो, व्यवहार जगत के अंदर, तो इसके अंदर 10-20% तो इसके अंदर लगाओ, तुम्हारी मुख्य चीज है। तो बंधुओं, उस आत्मा को हम कैसे जाने, हमारी मेथोडोलॉजी, हमारी कार्य प्रणाली, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कौन से वे तत्व है कि जिनको हम जान करके आत्म तत्व की सुरक्षा कर सकते हैं। वो है हमारे जैन धर्म में भगवान ने दिए 9 तत्व। 9 तत्व के अंदर समग्र आत्मा का ज्ञान आ गया। और ये 9 ही तत्व जो है ये है, जानने योग्य है। ये 9 तत्व हमारे इस हिंदुस्तान में जितने भी धर्म दर्शन है उसमें से जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी अपनी बहुत बड़ी विशेषता होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई गायक कलाकार होता है, कोई नाटककार होता है, कोई वक्ता होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई बड़ा समाजसेवी होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है ये हमारे जो 9 तत्व है ये इनका हर जैनी मात्र को, देखिए ये हम भूल ना करें कि जैन कुल में जन्म ले लिया हम श्रावक बन गए बंधु, ये भूल नहीं करें। श्रावक वह होता है जो कि अध्यात्म का श्रवण करता है और त्याग पहचान करता है। अगर आपके 1-2-5 छोटे मोटे त्याग भी अगर आपके वो नियमित रूप से नहीं है तो आप श्रावक की परिभाषा में नहीं आते हैं। चाहे धोरी श्रावक के घर में आपने जन्म ले लिया हो, विशिष्ट श्रावक के घर में जन्म लेने से ठीक है, अब वो श्रावक का घर है, श्रावक कहे जाओगे, लेकिन श्रावक कब बनता है बंधुओं? त्याग पचकान नियमित रूप से होना चाहिए, चाहे प्रतिदिन एक माला का हमारे पचकान हो या कोई भी स्वाध्याय का पचकान हो। जैसे यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है कि मैं रोज स्वाध्याय करूंगा, ये गुरु धारणा में आता है, ये इसलिए है कि ये हमारी त्याग वृत्ति को जगाता है। तो हम 8 बजे तक ये क्रम चलाएंगे, तो आज ये 9 तत्व की हम परिभाषा करते हैं। ये 9 तत्व 20 मिनट के अंदर संक्षिप्त के अंदर ही समझा पाऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो एक तत्व को समझाने में घंटों घंटों लग जाते हैं। तो पहले हम देखें कि 9 तत्व कौन से हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। वैसे 9 का अंक जो है वो अक्षय होता है, तो ये 9 तत्व भी अक्षय है। अगर हमने 9 तत्व की अच्छी तरीके से जानकारी कर ली, हृदयंगम कर लिया, आचरण में डाल दिया, हमारी बुद्धि प्रज्ञा तक पहुंचा दिया, तो समझिए कि हमने आत्मा के इर्द गिर्द आत्मा के अस्तित्व को जानना प्रारंभ कर दिया, हमने मोक्ष की नींव लगा दी। तो हम चलते हैं पहले जीव तत्व। जीव, आत्मा, इसके हमारे आदमों के अंदर 23 नाम आते हैं, और हमारे यहाँ पर उन 23 नाम का जो है एक ही है, वो हमारी आत्मा है, वो जीव तत्व है। जीव किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है। जीव कहिए, आत्मा कहिए, कुछ भी कहिए, हमेशा ध्यान रखें कि उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं करना है। वो हमारी जैन परिभाषा के अंदर जीव और आत्मा एक ही शब्द है। दूसरे दर्शन के अंदर उसके अलग अलग अर्थ है, लेकिन जैन धर्म में उसका एक ही अर्थ है। अब प्रश्न ये है कि जीव है तो जीव का लक्षण क्या है, जीव की परिभाषा क्या है? उपयोग लक्षणों जीव, जीव उसे कहते हैं जिसमें उपयोग हो, जिसका लक्षण उपयोग हो उसे जीव कहते हैं। और उपयोग किसको कहा जाता है? ज्ञान और दर्शन। दर्शन का मतलब होता देखना, तो जैसे मैं आपको सामान्य रूप से देख रहा हूं, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, और ज्ञान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को हमने देखा उसके बारे में गहरी जानकारी करनी, आत्म तत्व की बात सुनी, उस आत्म तत्व को गहराई से समझना, ये सारा ज्ञान कहलाता है। तो इसका जो उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा का लक्षण ज्ञान और दर्शन है। और आत्मा के अंदर क्या होता है, इसमें संवेदना होती है, और ये आत्मा किसी शरीर में बद्ध आत्मा जाती है। आत्मा 2 तरह की होती है, एक बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा। जो आत्मा कर्मों से आवृत होती है वह बद्ध आत्मा कहलाती है, और कर्मों से मुक्त हो जाती है वो मोक्षगामी आत्मा, शुद्ध आत्मा कहलाती है। शुद्ध आत्मा के साथ में कर्म नहीं होती है, और हमारा लक्ष्य भी शुद्ध आत्मा बनने का है। अगर हम इस जो कर्म रूपी जो हमारा जड़ तत्व है, या कर्म रूपी जो इसमें चिकनाई है, राग द्वेष की है, कर्म रूप के अंदर इसमें मल है, रज है, उसको हम अलग कर देते हैं, तो ये आत्मा 24 कैरेट का शुद्ध सोना रूप में आत्मा, शुद्ध आत्मा हो जाती है, और वही हमारा लक्ष्य है। ये 9 तत्वों की हम जानकारी क्यों कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो जीव अजीव का जुड़ाव है, मैं जो बोल रहा हूं ये जीव अजीव का मिश्रण है। शरीर अजीव है, और इसके अंदर भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। जो आत्मा है वह जीव है बंधुओं, तो इस तरीके से आत्मा संवेदनशील है, आत्मा प्रजनन करती है, आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है और आत्मा के अंदर चेतना होती है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और दूसरा जब आएगा अजीव का, तब अजीव की परिभाषा दूंगा। तो मतलब हमारी जो चेतनामय आत्मा है वह जीव कभी भी अजीव नहीं बनता है। हमारी जैन धर्म की थ्योरी है कि जीव त्रैकालिक जीव ही रहता है, वह कभी भी जो है अजीव नहीं बनता है, और अजीव कभी भी जीव नहीं बनता है, दोनों मिश्रण हो सकते हैं, दोनों जुट सकते हैं, जैसे कि मेरा ये शरीर है वो मिश्रण है। तो ये हमारी बद्ध आत्मा, ठीक है ना, ये होता है जीव, उसको जीवास्थि काय भी बोला जाता है, इसको हम जीव कहते हैं। अब आत्मा के लक्षण के गुण क्या है आत्मा के, कि हमारी शुद्ध आत्मा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख वाली आत्मा है, ये उसके गुण हैं। मतलब इस आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। हम नया कुछ नहीं करते, नया कुछ नहीं करना है, हमारी अनंत ज्ञान वाली आत्मा है, उसके ऊपर जो पर्दे पड़े हुए आठ पर्दे आठ कर्मों के, उनको साधना के द्वारा, उनको तपस्या के द्वारा, तप के बारह भेद के द्वारा, निर्जरा के द्वारा, एक 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 करके उस पर्दे को हटाना है। जो जो देखिए भगवान की मूर्ति है उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है तो भगवान दिखाई नहीं देते, उस पर्दे को हटा दो तो भगवान की मूर्ति दिखाई देती। तो ठीक इसी तरीके से ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा हटा तो ज्ञान एकदम स्वच्छ रूप से दिखाई देता है। तो ये ज्ञानावरणीय ये अलग विषय है, क्योंकि 15 मिनट में 9 तत्व तो बताने हैं, तो एक में ही बताऊंगा तो पूरा। तो इसीलिए ये 8 जो कर्म के जो है ना पर्दे इसके ऊपर पड़े हुए हैं, इनको हटाना हमारा लक्ष्य है। तो ये हो गया जीव, मुझे 9 तत्वों के साथ में न्याय करना है। वक्ता को जो बात कहता है और जो विषय लेता है उसका पूरा प्रतिपादन, जितना समय हो, गाजर में सागर भरना, 1 मिनट हो तो कितनी बात करनी, 15 मिनट हो तो कितनी बात करनी, और 15 घंटे हो तो कितनी बात करनी। तो 15 मिनट के अंदर 9 तत्वों को समझाना है। आप कह रहे हैं कि 10 मिनट ज्यादा चलाओ, चलो तो 25 मिनट मिले हैं तो मैं थोड़ा और विस्तार से देखिए भाई, ऐसा जितना आप समय दोगे हम तो उसके अंदर समेट लेंगे। हमारे पास में पहली क्लास को पढ़ा सकते हैं और पीएचडी को भी पढ़ा सकते हैं। गुरुदेव ने पूरा भंडार भर करके मुनीम को भेजा है, सेवक को भेजा है, वो उनके चरणों की रज है, उनसे प्राप्त किया, हम टेप रिकॉर्डर है। गुरुदेव ने इस बुद्धि के अंदर भर दिया है, हमारे को कुछ नहीं करना, टैप रिकॉर्डर को ऑन करना है, टैप रिकॉर्डर चलता रहेगा। आप कहोगे टैप रिकॉर्डर को बंद कर दो, बंद कर देंगे। आप कहोगे टैप रिकॉर्डर को चालू कर दो, टैप रिकॉर्डर चालू। तो हम बात कर रहे थे जीव की, बात कर रहे थे 8 कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये हमारी स्पेशलिटी है जैन धर्म की। भाइयों और बहनों, जैन विद्वान बनो तो आपका काया पलट हो जाएगा, और जैन विद्वान बनकर के जब किसी भी सभा के अंदर ये बात रखोगे ये हमारा सिद्धांत है, तो मैं स्वयं वक्ता हूं तो हमें कितनी बात मिलती है कि आपकी बातों में बड़ा तथ्य है, आपकी बातें प्योर मैथमेटिक्स है, आपकी बातें प्योर साइंटिफिक है, आप तोरे नहीं मार रहे हो, आप गपोड़े नहीं मार रहे हो, हमारे यहां पर एक एक कर्म के एक एक परमाणु की मैथमेटिक्स है। क्यों? इसका कारण यह है कि हमारे जो भगवान है वो तीर्थंकर है, वो केवली है, इनसे कोई चीज छुपी नहीं। अब मेरे पास में तो गुरुदेव जितना ज्ञान है नहीं है, तो मैं हर चीज का तो कहां से जवाब दूं। आप तुलना करो कि गुरुदेव जैसे जवाब दे देते हैं, उपासक दे देंगे तो कहां से देंगे। हमारी बुद्धि तो जड़ है, हम लोग सीमित बुद्धि है, जितना गुरुदेव ने दिया है उतना ही दे पाते हैं। तो केवली संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है वहां से, उनकी उनकी जो है भाषा से, उनके विचारों से, आत्मों से चीजें मिली गई, इसीलिए वो सारी ऑथेंटिक या प्रमाणिक है। तो ये हो गया हमारा जीव का आत्मा का। अब अजीव, अजीव का मतलब होता है जैसे जिसके अंदर चेतना नहीं हो उसको अजीव कहते हैं, ठीक है ना। अजीव में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। कोई आपको पूछे, आप जैन स्कॉलर हो, आधी रात को उठा के पूछे आपसे अजीव की परिभाषा बोलो, तो कहना है जिसमें वर्ण होता है, जिसमें गंध होता है, नौ तत्वों की परिभाषा चल रही है, तो जीव और दूसरा अजीव तत्व है। अजीव वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। और ये अजीव को पुद्गल भी कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें चेतना नहीं हो वो अजीव है, और अजीव होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, आई समझ में। और इस सृष्टि के अंदर सारा सृष्टि का निर्माण है उस अजीव ने किया है। बंधुओं, एक बड़ी विचित्र बात है कि सृष्टि के अंदर जीव और अजीव की तुलना के अंदर अजीव बहुत ज्यादा है और जीव उसकी संख्या में कम है। जीव सारी आत्मा है, आत्मा है 84 लाख जीवा योनियों में भटकती है। और देखिए जैन धर्म की कितनी कितनी स्पेशलिटी है। आप जैन धर्म की स्पेशलिटी खास खास बिंदु जानना चाहो तो मैं सैकड़ों बिंदु बता दूं। उसमें से एक बिंदु जैन धर्म का है जो मैंने पहले बताया कि चेतन कभी भी अचेतन नहीं हो सकता, जड़ नहीं हो सकता। जड़ कभी भी जो है चेतन नहीं हो सकता, दोनों हिल सकते हैं, दोनों आपस में मिल सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो दूसरी हमारी जैन धर्म की पिक्यूलियर थ्योरी, विशेषता जो अन्य धर्मों में नहीं है, वो क्या है कि हमारी नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष मान लो, जहां आत्माएं निवास कहां करती है, चार गतियों में पांचवा मोक्ष है, इन सब की मैं टोटल करता हूं, मान लीजिए वो टोटल एक्स आई। तो एक्स जो है भूत में भी एक्स रहेगी, भविष्य में भी एक्स रहेगी और वर्तमान में भी एक्स रहेगी। जैन धर्म ये कहता है कि आत्मा नई पैदा नहीं की जा सकती है, एक भी आत्मा की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। आप देखिए रेलवे के अंदर आप कभी गए हो तो वहां गोले लगे हुए हैं, 24 गोले होते हैं, वो गोला घूमता रहता, 25वां गोला नहीं है, वो गोले 24 ही रहते हैं, हर स्टेशन पे 24 रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, निकलता रहता है, वो सिग्नल देकर के ट्रेन रवाना हो जाती है। तो आत्मा जैन धर्म कहती है कि आत्मा उत्पन्न नहीं की जाती है, इसको पश्चानुपूर्व भी कहते हैं। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि पहले आत्मा हुई या पहले कर्म हुआ या शरीर हुआ, तो इसका जवाब जो है तीर्थंकर भी नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने कहा पश्चानुपूर्वी है, क्योंकि पता नहीं ये कब से चली रही है, हमारी आत्मा और कर्म शरीर है कब से चला आ रहा है, बद्ध आत्मा कब से चली आ रही है, तो उसको पश्चानि मतलब हर समय थी। तो इस तरीके से, और अब हम अजीव की बात कर रहे हैं, आत्मा एक भी न घटती न बढ़ती नहीं है, होता क्या है, रूपांतरण होता है, नरक गति से तिर्यंत, तिर्यंत से मनुष्य, मनुष्य देव, और हो सकता है देव से या मनुष्य, मनुष्य देव से नहीं, मनुष्य जन्म से मोक्ष चला जाए, लेकिन टोटल में एक्ट ही रहेगा। अगर मान लो एक जीव मोक्ष गया मनुष्य जन्म से, तो वो एक्ट माइनस वन इधर हुआ तो मोक्ष में प्लस हो गया, तो एक्ट का एक्ट रहता है, ये विशेष बात। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं दूसरी अजीव की बात, अजीव भी भगवान ने एक छोटा से छोटा अजीव को बताया, उसको हम कहते हैं परमाणु। हमारी ये जो परमाणु विज्ञान कहता है, विज्ञान भी परमाणु बोलता है, लेकिन वो परमाणु नहीं है, वो अणु है। अणु के हमारे हिसाब से टुकड़े होते हैं, परमाणु जो भगवान ने बताया है उसके जो पुद्गल का वो जड़ का छोटा से छोटा जो भाग है वो परमाणु है। परमाणु किसे कहा गया है, उसमें भी पौद्गलिक है, वो उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, क्योंकि पुद्गल है, जड़ है, तो वर्ण गंध रस इस पर सब है, लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देता। अच्छा दूसरा क्या, उसको कितना ही तोड़ो उसके टुकड़े नहीं हो सकता, वो किससे रुकता नहीं है और किसी को रोकता नहीं है, वो हमारा परमाणु है बंधुओं। तो भगवान ने क्या कहा कि जो चेतना पे फॉर्मूला है आत्मा के, वही फॉर्मूला जड़ पे है। जड़ का भी सारे परमाणुओं की संख्या पूरी सृष्टि के अंदर वायु मान ली मैंने, भूत भविष्य और वर्तमान में वायु रहेगी। अब देखिए एक सोने का टुकड़े का अणु या परमाणु टूटे और वो अपरस बन गया, भोडल बन गया, दूसरे में रूपांतरण होता है, इसको हम पर्याय कहते हैं। हमारे रूपांतरण को क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। उन्होंने भगवान ने जो है वो त्रिपदी दी, त्रिपदी का ज्ञान दिया भगवान ने। वो त्रिपदी क्या है कि वो उन्होंने बताया कि अपने पर्याय को त्रिपदी बोला है कि उत्पाद वे ध्रुवात्मक सत, किसी वस्तु का अस्तित्व कब है, कोई वस्तु चाहे जड़ हो चेतन हो उसका अस्तित्व जब है उसमें उत्पाद वो उत्पन्न होती है और व्यय वो समाप्त होती है। लेकिन उत्पन्न और समाप्त होने के बाद भी वो द्रव्य है, द्रव्य मतलब शाश्वत है। मैं उदाहरण देता हूं कि किसी बहन जी के सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े को सोनी के पास उड़ाया, उसका नेकलेस बनाया, तो सोने का कड़ा टूटा वो तो व्यय हुआ और नेकलेस बना वह उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों परिस्थिति में सोना ही है, सोना नहीं बदला है, नेकलेस को परिवर्तित करके उसको जो अपने कड़े को परिवर्तित करके नेकलेस बनाया, लेकिन वो सोना है इसलिए द्रव्य है। तो इस तरह से हमारी आत्मा भी कभी ज्ञान में जाती है कभी दर्शन में जाती है, ये पर्याय है। अगर ये ज्ञान और दर्शन दो आत्मा के साथ ना हो तो आत्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता, दो होने जरूरी है, उसका नाम पर्याय है, उत्पाद और व्यय। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वह वस्तु द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, इसीलिए वह वस्तु का, ये हमारी स्पष्टता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बंधुओं आप जैन धर्म को गहराई में जाकर के एक स्कॉलर के रूप में पढ़ेंगे तो आपको इतने इतने सत्य मालूम होंगे कि सारी ब्रह्मांड की जानकारी हो जाएगी। शुद्ध ज्ञानी होते हैं वो एक तरीके से वो शुद्ध केवली का काम करते हैं, आत्मों के जो ज्ञाता होते हैं वो क्या के सारा उनको भीतर का अनुभव का केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो प्रस्तुति दे सकते हैं। इतना हमारे इस जैन धर्म के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतना ज्ञान है। कोई मैं अजीव की बात कर रहा था, जीव अजीव और सारा ब्रह्मांड है वो अजीव से, एक आत्मा को छोड़ के जितना ब्रह्मांड के अंदर सब अजीव है, सारा ब्रह्मांड जीव और अजीव मात्र दो तत्वों से बना हुआ। आप मेरे को शॉर्ट में कहो कि ये पूरा ब्रह्मांड ये पूरी सृष्टि किससे बनी हुई है, तो आदम कहते हैं मात्र दो तत्व है जीव और अजीव। आप अपनी सारी दृष्टि दौड़ा करके देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा आदमी है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, बैल है, 84 लाख जीवा योनि है और इधर मकान है, ये है वो है, तो दोनों आप खुद समझ जाओगे कि जीव अजीव दो ही वर्गीकरण हुआ, तीसरा है ही जीव अजीव। तीसरा पुण्य और पाप, मैंने कर्म की बात कही, वो कर्म जब उदय में आते हैं, हमारी जैन धर्म का जब कर्म का एक दिन टॉपिक लेंगे तो जैन धर्म ही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि आत्मा के साथ चिपके हुए जो कर्म पुद्गल है ना वो पौद्गलिक है, उसकी एक एक संख्या है। हम जो है हमारे कर्मों को चार भागों के अंदर बांटते हैं, वो चार भाग क्या, प्रकृति, प्रकृति का मतलब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, आठ कर्मों को प्रकृति कहते हैं। स्थिति, हर कर्म हर आत्मा के साथ में कितने समय तक रहेगा, कर्म का कोई ठेका नहीं है जिंदगी भर रहेगा, कर्म जुड़ते हैं टूटते हैं, निर्जरा होती है बंद होता है, तो इसलिए। और प्रकृति स्थिति प्रदेश, उस कर्मों की संख्या कितने परमाणु हैं, और वो परमाणु आज विज्ञान ने भी कहा उसको मास लेस पार्टिकल, भगवान ने तो कहा उसको चतुस्पर्शी, और विज्ञान ने उसको कहा है मास लेस पार्टिकल वह होता है जिसके भार नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, हम जितने बैठे हैं यहाँ पर, जन्म जन्मांतर का हमारा कर्मों का चिट्ठा, कई जन्म हमारे हुए और कई जन्म हम मोक्ष में जाने के पहले लेंगे, उन सारा चिट्ठा हर वक्त हम साथ लिए चलते हैं। अब बोलिए, सौ सौ जन्मों का, पता नहीं कितने जन्मों का चिट्ठा, क्या भार नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अरूप ही है, आत्मा का तो भार होता ही नहीं है, दिखती नहीं है, भार कहां से होगा? लेकिन जो हमारा कर्म शरीर है इसमें भी भार नहीं है, मासलेस पार्टिकल है, चतुस्पर्शी है, लेकिन ये सिम की तरह, और सिम से भी कितने सूक्ष्म चीजें आ गई है उसकी तरह, इतना पावरफुल है, सौ सौ हजार हजार लाख लाख जन्म का चिट्ठा हमेशा साथ लिए घूमता है, हर वक्त आत्मा के साथ में हमारा कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, हम कितने कितने जन्मों तक उसको साथ साथ लेके घूमते रहेंगे, आराम से घूमते हैं, कोई बात महसूस नहीं होता। तो पुण्य जब हमारा कर्म बंद किया हुआ उदय में आता है, उदय में आता है, उदय में आने के बाद में वो शुभ परिणाम देता है। शुभ परिणाम कैसे देता है कि कोठी बन गई, कार आ गई, आइटम में, और पद प्रतिष्ठा बन गई, जैसे रामचंद्र कोविंद हम कल बात कर रहे थे टीकमचंद जी से, कितना भाग्य है, तो उनके कर्मों का उदय आया, उनकी जन्म पत्री में था, अपनी भाषा में बात करें, उन्होंने शुभ कर्म का अर्जन उनका उदय में आया, तो इसको हम कहेंगे पुण्य कर्म। उनका पुण्य कर्म उदय में आया तो कहां से उनको मोदी जी उठा करके और कहां पर हमारा सिरमौर बना दिया, भारत का प्रथम नागरिक बना दिया, वो खुद ही आप बता रहे थे, उनकी ये तो बहुत करीब है कि उनको खुद को पता नहीं कि मैं इस पद पर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए कर्म ले गए। तो इसीलिए कहते हैं को सुख को दुख देत है कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। बंधुओं, आप जो है बाबा रामदेव के भक्त हैं, तो बाबा रामदेव के ऊपर जो है वो लगी है ना, वो आयुष्मान में, तो वो क्या है कि हिलती है डुलती है ऊपर, तो उसको कौन हिलाता है? पवन झकझोर, पवन हिलाती है। तो इसीलिए हमको सुख और दुख देने वाला हमारा कर्म ही है। जैन धर्म कहता है दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, 33 करोड़ देवी देवता, 24 तीर्थंकर, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दुख दे सके। और 33 करोड़ देवी देवता सारे आ गए और आपके 24 तीर्थंकर आपका भला कर सके? नहीं, सब होता अपने कर्मों से, उनका आलंबन जरूर होता है, हरेक आलंबन श्रद्धा विश्वास जरूर होता है, वो बात अलग है। हम कहते हैं कि उनकी कृपा से हुआ, वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारा समर्पण है, हम उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, हम उनके भक्त हैं, वो बात अलग है। लेकिन होता शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो उसको हम पुण्य कहते हैं। बंधुओं, जो कुछ आज मिल रहा है आपको, जिस जिसको जो मिला है, वह सब पुण्य कर्म के उदय, उदय होते ही वो ऑटोमेटिकली सुख सुविधा सारी मिलती रहती है। और इसके विपरीत जाऊं, बीमारी, चोरी, घाटा, नफा, नुकसान, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पागल होना, कितनी 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 बीमारियां, कितनी कितनी तकलीफ, वो पापोदय से आती है। ये क्रम चलता रहता है, पुण्य समाप्त हुआ, पापोदय प्रारंभ हुआ, तो पाप के क्रम में पाप दुख देता है और पुण्य सुख देता है। पर बंधुओं, ये दोनों पौद्गली के दोनों बेड़ियां हैं। पाप जो है वो हमारी लोहे की बेड़ी है, पुण्य में राजी मत होना, बंगला मिल गया, करोड़पति बन गया, इतना बड़ा मिनिस्टर बन गया, लेकिन ये भी बेड़ी है, इससे भी मुक्त होना है। ये सोने की बेड़ी है, एक बहुत बड़े राजनेता को जेल के अंदर डाल करके सोने की बेड़ी लगा दी और एक सामान्य व्यक्ति को जेल में डाल करके और हमने जो है उसके अंदर लोहे की बेड़ी लगा दी, लेकिन दोनों है तो कैदी। हमको पाप पुण्य से दोनों से मुक्त होना है। और बंधुओं, आठ कर्म का मैंने वर्गीकरण किया, चार कर्म तो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, उनको हम घाती कर्म करते हैं। हर हर जीव के हर क्षण वो लगे रहते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। और दूसरे चार कर्म होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं, वो होते हैं हमारा आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये कर्म शरीर से जुड़े हुए हैं, मनुष्य का शरीर होगा, ये चार कर्म दूसरे तरीके के होंगे। बिल्ली का शरीर धारण करेंगे वो दूसरे तरीके से होंगे, क्योंकि एक्शन बदल जाता है उसके शरीर का, काम पद्धति उसका एक्शन बदल जाता है। तो शरीर से जुड़े हुए चार कर्म है वो शरीर, तो ये पुण्य पाप, जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव। बंधुओं, मैं एक उदाहरण के द्वारा, भिखंडी स्वामी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, एक तालाब, इसको समझना हो, एक तालाब है, ठीक है ना। उस तालाब का एकदम सबसे पहले क्या है, एकदम स्वच्छ तालाब, एक उसके अंदर बालू रेत, जो हमारे चूरू जिले में रेगिस्तान में बालू रेत, तो बालू रेत का एक कण भी नहीं है, वो शुद्ध आत्मा उसको मोक्ष का रूप दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद के अंदर जो वो जो उसके अंदर हम पानी डालते हैं, पानी से भर दिया, तो गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि गंदगी तो बाहर से आती है। जो गंदा पानी है वह पानी हो गया पाप, और साफ पानी है वो पुण्य हो गया। ये पानी आया कहां से, हमने नाले में से पानी डाला है, ये नाला है आश्रव। अब हमको वो खाली करना है कि भाई भर दिया तो खाली करो। खाली करने के लिए पंप निकाला, पंप लगाया, पंप लगाकर उसको बाहर फेंका, खाली किया, तो ये निर्जरा है। निर्जरा का अर्थ होता है कि जो कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, जैसे टच हो रहा है, अब ये मैंने हटाया तो एक तरीके से निर्जरा होगी। आत्मा के साथ कर्मों का अलग होना, विलग होना, वह निर्जरा कहलाती है, और उसके साथ में जुड़ना है वो बंद कहलाता है। अब ये पानी, गंदा और अच्छा पानी, ये मिक्स हो गया ना, ये बंद कहलाता है। तो ये और संवर जो है वो इसको प्रक्रिया, मतलब उसको साफ करने की प्रक्रिया, संवर यानी जो हमारा जो नाला है ना, उस नाले को क्या किया कि हमने बंद कर दिया, उसके अंदर जो है वो सीमेंट भर दी, तो अब पानी नहीं आ सकता। यानी हमने कर्मों के आने का रास्ता है वो बंद कर दिया, वो संवर कहलाता है। तो बंधुओं, जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव, आश्रव नाला है, कर्मों के आने के रास्ते को आश्रव कहते हैं। ये हमारा 24 घंटे गृहस्थी के खुला है, लेकिन जो ही आपने त्याग किया, पचकान किया, सामायिक में बैठे, तो 48 मिनट के लिए आपने उस नाले को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। वो काम हमें करना है। हम 9 तत्वों को समझ करके कौन से हमारे जानना, सबको ये है, ये कौन सा 9 में से और उपादेय कौन सा है। तो जैसे देखिए, जीव, जीव की शुद्ध अवस्था है वो उपादेय है, मोक्ष जाने की है, और जीव की अशुद्ध अवस्था है वो हे है, अजीव है वो हे है, पुण्य पाप दोनों हे है, और आश्रव जो जिसकी बात कर रहा हूं वो हे मतलब त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। जितनी जितनी धर्म की प्रवृत्ति होती है वह सारा संवर है, जितना जितना त्याग है वो सब संवर के खाते में आता है। जो ही आपने त्याग किया, जो ही मारा फेरना प्रारंभ की, आप कौन से खाते में चले गए, आत्मा के खाते में। जो ही खुले हुए, आप शरीर के खाते में आ गए। हम दोनों खाते में चलते रहते हैं। आपने भाव शुद्धि करी, भीतर पश्चाताप चालू किया, प्रायश्चित किया, विनय करी, बैठे बैठे सोते सोते। बंधुओं, धर्म कोई समय करने से नहीं होता है, भाव शुद्धि से होता है। समय तो सिस्टम, एक प्रक्रिया है, उसके अंदर बैठना है। लेकिन जितना जितना भाव शुद्धि भीतर बनता आती है, सम भाव को समय कहते हैं। तो ये
हम समभाव सोते सोते ला सकते हैं, खड़े खड़े ला सकते हैं, बैठे बैठे ला सकते हैं, लेकिन भावों से होता, भावों से ही व्यक्ति मोक्ष जाता है, भावों से ही व्यक्ति सातवीं नारकी में जाता है। मूल हमारी जो करने वाला जो सिस्टम का लिंक है, कहते हैं लिंक दीजिए, तो लिंक है वो हमारा भाव पक्ष है, जो हमारे को जोड़ता है, व्यवहार में जोड़ता है और आत्मा में जोड़ता है, ये लिंक है दोनों को जोड़ने का। तो जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव संवर और निर्जरा, हम जब हर धार्मिक क्रिया के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई, मतलब देखिए कि कुल मिला के निष्कर्ष यही आएगा कि धर्म करो, आत्मा के खाते में जाओ, आत्मा के खाते में जाते ही निर्जरा स्टार्ट। और जो ही आपने पचकान किया, निर्जरा देखो कि आपने पचकान भी नहीं किया, आप कष्ट सह रहे हो, आपने जो है वो उपवास का पचकान नहीं किया, लेकिन शरीर तो तप ही रहा है ना, ये तपता शरीर नहीं है, ये तपता है कर्म शरीर जो आत्मा के साथ, जिसकी मैं जो आठ कर्मों की बात कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको दूध गर्म करना है तो पहले आप क्या सीधा दूध को, मैंने जानती है दूध को, क्या हम सीधा स्टोव के ऊपर डालेंगे, आग बुझ जाएगी, नहीं होगा गर्म, भगोले में डालना पड़ेगा, ये शरीर भगोला है, भगोले को तपाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए पहले भगोले तपेगा जब दूध गर्म होगा, तो ये भगोला है जो इसको तपाते हैं, लेकिन ताप किसको लगता है, हमारे को इसको तपाने का लक्ष्य नहीं है, भगोले का लक्ष्य नहीं है, पर दूध कैसे गर्म करें, तपाना है दूध को, तपाना है कर्म शरीर को। जितनी जितनी हम धार्मिक क्रिया शरीर से ही होती है और किससे होगी, तपता है वो ताप लगता है कर्म शरीर। तो समय हो रहा है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा, आत्मा का कर्म अलग होते रहना, हर संवर के साथ में निर्जरा निश्चित रूप से होती है, आई समझ में। और निर्जरा जो है वह संभाव या सुख दुख को समता भाव रखने से भी निर्जरा होती है, लेकिन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन त्याग के साथ तो होती ही है, ही शब्द लगा है, क्योंकि हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई है। तो इसलिए जीव जीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंद जो है आपस में, जैसे मैं गंदा और अच्छा पानी का आपस में मिलान बताया, तो कर्मों का आत्मा के साथ फेविकोल बहुत अच्छा उदाहरण है, कर्मों के साथ में आत्मा के साथ कर्म कैसे जुड़े हुए हैं, फेविकोल है, और उनके अंदर मल्ल युद्ध चलता है। कभी क्या है कि आत्मा कर्म शरीर को पचा, कबड्डी उनकी मल्ल युद्ध चलता है, और कभी कर्म जो है आत्मा को पछाड़ते हैं, जब आत्मा कर्मों को पछाड़ती है, आप समाज में आते हैं, धर्म में आते हैं, क्षोक्षम बोलते हैं, क्षोक्षम आत्मा गुण है, धर्म की प्रवृत्ति आत्मा का गुण है, ठीक है ना। तो और दूसरा, हम जितना आश्रव करते हैं ये संसार का गुण है। तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर किसको पछाड़ना है, अब ये निर्णय हमारा हे और उपादेय करेगा। कहने का कि एक ज्यादा से ज्यादा धर्म करो, और भिक्षु स्वामी ने तो कहा धर्म करोगे तो बोनस मिलेगा, शेयर में बोनस मिलता है सभी जानते हैं, घर बैठे बोनस मिलता है, जितना जितना धर्म करोगे पुण्य ऑटोमेटिकली बोनस होता रहेगा आपके अकाउंट के अंदर, जैसे ब्याज चढ़ता है ना FD के अंदर अपने आप चलता रहेगा। इसीलिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि गेहूं की खेती करने के लिए हम खेती करते हैं, खाखले के लिए कोई करता है क्या, खाखला बाई प्रोडक्ट है, हमारा पुण्य बाई प्रोडक्ट है, उसको इतनी तवज्जो नहीं देनी है, हमारा लक्ष्य निर्जरा, हमारा लक्ष्य संवर है। और अब अंतिम जो है समय के अनुसार अंतिम मोक्ष है, आत्मा अलग, कर्म शरीर अलग, मिट्टी अलग, सोना अलग, 24 कैरेट मोक्ष। तो इस तरीके से बंधुओं, अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष बात का ये एक सेकंड में निष्कर्ष कहता हूं कि इसके अंदर जीव, जीव की जो धार्मिक अवस्था है, ठीक है ना, जीव की शुभ अवस्था है वो क्या है, उपादेय। और जीव दोनों तरह की करता है, जीव कभी
संसार में जीव ही तो जाता है, तो वो हे है, अजीव है वो, क्योंकि हमारा वही जकड़ा हुआ है, तो ये हे है। पुण्य पाप हे है, आश्रव हे है, छोड़ने योग्य है, और संवर निद्रा उपादे है, और मोक्ष तो लक्ष्य है, उपादे है ही है, बंद हे है बंधुओं। तो हे और उपादे नव तत्वों को समझ के, ये तो मैंने क्या उसकी भूमिका बताई, अभी तो किताब में भूमिका आती है पहले, तो ये भूमिका बताई है। किताब की 200 पेज करने में तो मेरे ख्याल 15 दिन लग जाएंगे, एक एक के कर्म कर्म को रहनी है। तो हमने संक्षिप्त के अंदर हमारे नवतत्वों का है, इसमें हे उपादेय को समझें, और कुल मिला के निष्कर्ष की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा समय धर्म की प्रवृत्ति में डालें। धर्म और आत्मा का सीधा कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है, धर्म आत्मा का खाता और संसार पुण्य पाप का खाता, पाप का खाता। तो किस खाते में जाना है, आप सब वणिक वर्ग के हो, नफा नुकसान जानने वाले हो, आप तय करो कि किस में लाभ है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं।